मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 23 सितंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका नाम है आशा, जो गोरछी हरियाणा से है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं कल के ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा जो विदेशी अनुदान के नियमन से संबंधित था, लेकिन आइए पहले कुछ थोड़ी सी दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। कल राज्यसभा ने जो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है उसे भी पारित कर दिया है। याद होगा कि मैंने आपको याद दिलाया था कि कृषि से संबंधित अभी केवल दो विधेयक पारित हुए हैं, तीसरा यह विधेयक राज्यसभा से पारित नहीं हो सका है और कल यह राज्यसभा से भी पारित हो गया है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ ही साथ कल एक और विधेयक पारित हुआ है, तीन विधेयक पारित हुए हैं जो श्रम संहिता से संबंधित है, लेबर कोड से संबंधित है। कल के दूरदर्शन के चैनल पर आपने इन विधेयकों के बारे में काफी खबरें सुनी हैं, इनमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं ये सब बताया गया था और बाद में फिर इस पर डिस्कशन भी कराया गया था, लेकिन अभी मैं इस विषय को यहां नहीं ले रहा हूं। लिया जा सकता है अभी इन विधेयकों को केवल लोकसभा ने पारित किया है, राज्यसभा के द्वारा अभी ये पारित किए जाने हैं जिनकी पूरी संभावना है कि राज्यसभा से ये पारित हो जाएंगे और पारित हो जाने के बाद मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों हो सका तो हम लोग इस विधेयक पर विस्तार के साथ बातें करेंगे। फ्रेंड्स, जब आप अखबार उठा करके देख रहे हैं तो दो तीन चीजें आपको अभी प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही हैं। पहला तो यह है कि जो कृषि से संबंधित तीन विधेयक पारित किए गए हैं तो इसमें किसानों का कितना हित निहित है, किसानों के यह कितना विरोधी है, इसको लेकर के लगातार आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। कुछ आर्टिकल्स मैं आज आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं कि जो किसानों का जो एप्रिहेंशन है, उनकी जो आशंकाएं हैं मूलतः क्या हैं। दैनिक भास्कर ने अपने एडिटोरियल में आज बहुत क्लियर कट ये लिखा है कि वास्तव में जो आशंका है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के नहीं है जितना कि इस बात को लेकर के है कि कृषि पर पूरी तरह से कारपोरेट का शिकंजा कस जाएगा। जो हमारे बड़े बड़े उद्योग घराने हैं उनके नियंत्रण में ये हमारी कृषि व्यवस्था भी आ जाएगी। और कुछ लोग यह जो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक जो कल पारित हुआ है इसे भी उसी से जोड़कर देख रहे हैं। इससे यह विधेयक कैसे जुड़ता है उसके बारे में लिखा गया है कि देखिए, आवश्यक संशोधन विधेयक के अंतर्गत, वस्तु संशोधन विधेयक के अंतर्गत यही किया गया है कि कुछ वस्तुएं जो आवश्यक वस्तुओं में थी उसे उस सूची से निकाल दिया गया है, जिसमें दाल भी है, जिसमें अनाज भी है, जिसमें तिलहन भी है, इन वस्तुओं को, आलू जैसे प्याज, इनको निकाल दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब, वहां से निकाल देने का मतलब यह होता है कि कोई भी व्यक्ति इन वस्तुओं का कितना भी संग्रहण कर सकता है, कितना भी स्टोर कर सकता है। पहले स्टोर करने पर नियंत्रण था क्योंकि आवश्यक वस्तुएं हैं, अगर आप संग्रहण करने लगेंगे तो बाजार में उन वस्तुओं की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी और अगर वस्तुओं की सप्लाई कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि उन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। अर्थशास्त्र में आप इतना पढ़ ही चुके हैं, जानते ही हैं। तो अब जबकि कारपोरेट घराने को मान लीजिए कि लाभ लेना है तो वो क्या करेगा, उसके पास तो इतना पैसा है, इतना धन है कि वो किसी भी वस्तु की कितनी भी क्वांटिटी खरीद सकता है। तो अगर आप इन वस्तुओं को उस सूची में रखेंगे तो ये ज्यादा क्वांटिटी खरीद करके इन वस्तुओं पर मोनोपोली नहीं बना सकेंगे, इनका स्टोर नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब जबकि आपने इन्हें उस सूची से निकाल दिया है तो ये कुछ भी स्टोर कर लेंगे फिर मनमानी दाम में बेचेंगे या कह लीजिए कि किसानों से मनमानी दाम में खरीदेंगे। तो ये मेन एप्रिहेंशन है और इसीलिए इस तीसरे विधेयक का भी विरोध किया जा रहा था। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लगातार नोट करते चले जाने चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीजें मिल रही हैं आपको, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इस तरह से छुटपुट रूप में मिल रही हैं, है ना। कोई लेखक किसी रूप में उठा रहा है, कोई विशेषज्ञ कोई बात कह रहा है, तो आपके पास इन सारी बातों का एक अच्छा कलेक्शन होना चाहिए। आज गृह मंत्री जी का भी हमारे एक लेख है किसानों को लेकर के कि कैसे इन विधेयकों से इसका फायदा होगा, जो दैनिक भास्कर में छपा है, ये भी आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जो दूसरा मुद्दा भी अखबारों में चल रहा है वो खासकर संसद में अभी जो कार्यवाही हुई, खासकर राज्यसभा में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया, इसके बारे में मैंने आप सबसे बात भी की है। इसको लेकर के भी लगातार बातें अब की जा रही हैं, इसके बारे में मैं अभी विस्तार से नहीं जाना चाहता। आज एक आर्टिकल छपा, ये भी दैनिक भास्कर में है और लिखने वाले हैं योगेंद्र यादव, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। मुझे बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से और बड़े सौम्य तरीके से अपनी बात रखते हैं योगेंद्र यादव जी, आप सब उनके नाम से बहुत अच्छे से परिचित हैं। इनका यह आर्टिकल आपको जरूर पढ़ना चाहिए और इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो पॉइंट आपको नोट कर लेने चाहिए। दोस्तों, एक शब्द अभी अखबारों में आपको शायद पढ़ने को मिला हो, अगर नहीं मिला हो तो शायद आगे पीछे आपको मिल जाएगा, वह शब्द है फेलुदा। फेलुदा, याद रखिए, ये खाने का फलूदा नहीं है, ये फेलुदा है। ये फेलुदा क्या है? कभी कभी सिविल सर्विस तक में भी इस तरह के क्वेश्चंस प्री में पूछ लिए जाते हैं और स्टेट सिविल सर्विस में थोड़े से पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है। बेसिकली ये फेलुदा क्या है, आइए तो हम अभी इसके नाम को देख लेते हैं कि अभी क्यों ये चर्चा में आया। बेसिकली जो COVID-19 की जो टेस्टिंग हो रही है, जो परीक्षण किया जा रहा है, उस टेस्टिंग का एक नाम है, टेस्ट किट है ये। टेस्ट करने वाला आप यूं कह लीजिए कि एक यंत्र है जिसका नाम है फेलुदा। अब इसका नामकरण फेलुदा क्यों किया गया? तो दोस्तों, ये नामकरण इसलिए किया गया है कि एक बहुत हमारे यहां प्रसिद्ध फिल्मकार हुए हैं, सत्यजीत राय, बहुत ही महान फिल्मकार सत्यजीत राय, बंगला भाषा में वो फिल्म बनाते थे। वो कहानियां लिखते रहे और कुछ छोटे छोटे उपन्यास लिखते रहे और उन उपन्यासों में उनका एक करेक्टर था फेलुदा। दरअसल उन्होंने दो करेक्टर तैयार किए थे, एक फेलुदा और दूसरा प्रोफेसर शंकु। और फेलुदा नाम, उनका जो ओरिजिनल नाम था फेलुदा का, वो था प्रदोष चंद्र मित्तर। ये बेसिकली प्राइवेट डिटेक्टर था, मतलब प्राइवेट जासूस था, निजी जासूस था। इसकी खासियत ये थी कि जिन मामलों को सुलझाने में सरकार और दूसरी एजेंसियां सिर खपा रही हैं, टाइम लगा रही हैं, उसको ये जो फेलुदा होता था, जो निजी जासूस है, वो मिनटों में सुलझा देता था। चाचा चौधरी की तरह आप समझ लीजिए, लेकिन ये जासूस था। तो ये अपने समय में बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ। बंगला, आज भी आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता वगैरह में, तो आप कह लीजिए कि जैसे शर्लॉक होम्स बहुत पॉपुलर करेक्टर है, उसी तरह का करेक्टर लगभग फेलुदा भी है। तो इस किट की खासियत ये है कि एक तो ये बहुत ही सस्ता है, 600 रुपए में बकायदे इसकी टेस्टिंग हो जाती है। दूसरा यह है कि इसकी जो एक्यूरेसी भी है वो लगभग 96%, बहुत अच्छी इसकी एक्यूरेसी है। तीसरा यह है कि ये फटाफट करके भी दे देती, 2 घंटे में ये आपको टेस्ट रिपोर्ट दे देगी, केवल 2 घंटे में, सोचिए। और यही तो फेलुदा भी करता था कि बड़े मामले जिनको कई साल लग रहे हैं उसको ये फटाफट सुलझा देता था फेलुदा को। तो उसको आधार बना करके इस किट का नाम रखा गया, COVID-19 की टेस्टिंग का टेस्टिंग किट है फेलुदा। आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी मुझे लगता है कि होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा आज के मुख्य विषय पर, वो है विदेशी अनुदान का नियमन, जिसके बारे में मैंने कल आपसे बात की थी। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क भी देने की गुस्ताखी की थी, और वह यह कि आप इस पूरे के पूरे विधेयक को केवल एक पॉइंट पर समझने की कोशिश कीजिए, जिसे मैंने इस पूरे के पूरे विधेयक का बेस कहा था, और वो ये कि विदेशों से पैसा हमारे एनजीओस को मिलता है। हालांकि वो देते ठीक हैं, पर्यावरण के काम के लिए दे रहे हैं, शिक्षा के लिए दे रहे हैं, हेल्थ के लिए दे रहे हैं, इस तरह से हमारे सामाजिक कल्याण के लिए ये देते हैं, सामाजिक विकास के लिए ही देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन उसके पीछे उनका कुछ और भी मंतव्य होता है। वो हमारी सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित करना चाहते हैं, अपने हितों को साधना चाहते हैं, हमारे आर्थिक विकास में बाधा डालना चाहते हैं। वो उनके अपने अपने थोड़े से छिपे हुए उद्देश्य भी होते हैं। बस केवल इसके आधार पर आपको इस विधेयक को देखने और समझने की कोशिश करनी है। मुझे विश्वास है कि आप सबने जरूर ऐसा कुछ किया होगा, और चलिए अगर आपने ऐसा नहीं किया हो तो अब मैं आपको इस, ये जो रेगुलेशन एक्ट जो आया है, संशोधन किया गया है, इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और उनको अब आप इससे सीधे जोड़ते हुए चले जाएंगे। यानी कि जो विदेशों से पैसा आ रहा है, सरकार ये चाह रही है कि इस पैसे का दुरुपयोग न हो, बस सिर्फ ये कि इस धन का दुरुपयोग न हो, जिस उद्देश्य से ये धन दिया गया है एनजीओ को, हमारे एनजीओ इस धन का उपयोग उसी काम के लिए करें। अब ऐसा नहीं है कि धन तो दिया गया है पर्यावरण की रक्षा के लिए, ठीक है, इसके बाद सरकार ने कहीं एक फैसला किया कि यहां बांध बनाया जाना है, तो अब बांध बनाए जाने में भाई वहां की जमीन डूबेगी, जंगल डूबेंगे, फिर वहां जैव विविधता भी नष्ट होगी, तो पता लगा कि पर्यावरण के रक्षा के नाम पर अब उस बांध को बंधने से रोका जा रहा है। तो ऐसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जांच पड़ताल में ये पाई गई है कि इस तरह से काम किए जा रहे हैं, तो बस आपको ये दिमाग में रखना है। अब आप देखिए कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। पहला यह है कि कुछ ऐसे लोग अनुदान नहीं ले सकेंगे। कुछ पहले से भी ये प्रोविजन था, उसमें सिविल सर्वेंट को और जोड़ दिया गया है। जैसे जो चुनाव लड़ते हैं वैसे लोग नहीं ले सकेंगे, जो अखबारों के जो संपादक हैं वो विदेशी अनुदान नहीं ले सकेंगे, जो जजेज हैं वो नहीं ले सकेंगे, एमपी और एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है ये नहीं ले सकेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी है ये भी विदेशों से अनुदान नहीं ले सकेंगे। क्यों नहीं ले सकेंगे, अब जोड़ करके देखिए, क्योंकि ये पावरफुल लोग हैं, इनको प्रभावित करके, जो विदेशी शक्तियां इनको प्रभावित करके देश के विकास को ज्यादा बाधित कर सकते हैं, राइट। तो अब ये सीधे सीधे जुड़ गया। इसके बाद है कि जो जिस काम के लिए आपने अनुदान लिया है आप उसी काम में इसे लगाएंगे, आप इसे दूसरे काम के लिए स्थानांतरित नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते कि ठीक है पर्यावरण के लिए लिया है अब उतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो आप शिक्षा में लगा देंगे, नॉट एट ऑल। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आप उसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप ठीक है सरकार की अनुमति लेकर के बकायदे उसे दूसरे काम में लगा सकते हैं, तो सरकार की निगरानी रहेगी ना उस धन के ऊपर कि उसी काम में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसमें एक प्रोविजन और कर दिया गया है कि अगर सरकार को, जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण पर आपने लिया था, सरकार से अनुमति लेकर के आपने शिक्षा पर वो पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार को लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो शिक्षा पर सही तरीके से खर्च नहीं हो रहा है, तो सरकार बकायदे अपनी उस अनुमति को वापस ले सकती है। पहले यह था कि एक बार आपको अनुमति मिल गई तो ठीक है आप उसके जहां खर्च करना चाहे वहां खर्च कीजिए। इसके बाद उन्होंने कहा दोस्तों कि जो विदेशों से धन आएगा वो केवल एक ही आपके अकाउंट में वो पैसा आएगा, ये नहीं कि आपने 50 अकाउंट खोल रखे हैं और उनमें पैसा आ रहा है, नहीं, केवल एक ही आएगा, FCRA नाम से अकाउंट खुलेगा, मतलब अकाउंट है जिसमें आप अपना अकाउंट खोलेंगे, और वो जो बैंक होगा वो केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच होगी, दूसरे किसी भी बैंक में आप खाता नहीं खोल सकते, सारा का सारा विदेशी अनुदान केवल एक ही बैंक के शाखा में आएगा। अब आप देखिए कि इससे क्या होगा कि अब एक ही जगह पैसा आ रहा है, अब आप गच्चा नहीं दे सकते कि यहां भी आ गया वहां भी आ गया, सरकार को मालूम है कि आपके पास इतना पैसा आया है। आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भाई मान लीजिए कि कोई ऐसा एनजीओ है जो पूरे देश में काम कर रहा है तो क्या वो दिल्ली में खाता खोला है तो बार बार दिल्ली से ही काम करेगा, नहीं, एक बार यहां पैसा आएगा, अब आप इस पैसे को अलग अलग जगहों के अकाउंट खोल करके ट्रांसफर कर लीजिए, तो अब आप भारत में आए हुए धन को ही भारत की दूसरी शाखाओं में भेज रहे हैं, विदेशों से सिर्फ एक ही शाखा में पैसा आएगा, तो देखिए सरकार की बकायदे निगरानी रहेगी उस पैसे पर। फिर इसमें यह भी किया गया है कि जो बाहर से जो पैसा आता था तो उसमें होता यह था कि लोग दुनिया भर का खर्च उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में करते, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में, मतलब यहां तक आया कि 70-70%, जैसे मान लीजिए किसी ने 100 करोड़ रुपए भेजा है कि भैया ये चलिए ये शिक्षा के लिए है, तो 70 करोड़ रुपए तो केवल लोगों के आने जाने में, ऑफिस के खर्चे में, टेबल कुर्सी गाड़ियों में खर्च हो रहे हैं, और मुश्किल से 20-25-30 करोड़ रुपए जिसमें लगना चाहिए था उसमें लग रहा है। सरकार ने साफ कर दिया कि नहीं, पहले यह था कि आप 50% तक खर्च कर सकते हैं इन कामों के लिए, अब उसे और भी घटा दिया है कि आप केवल 20% केवल खर्च कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट व्यय होगा, बाकी पैसा आपको उद्देश्य में ही लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, जो इसके अधिकारी होंगे उनका बकायदे आधार नंबर लिया जाएगा ताकि उनको उन पर सरकार की निगरानी रहे, तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं विदेशी धन के नियमन के लिए की गई हैं। और खासकर जो मेरा पर्पस था बताने के पीछे कि आप देखिए कि अगर आप एक बेसिक बात को पकड़ लेते हैं तो किस तरीके से बाकी चीजें न केवल आपके लिए समझना ही आसान हो जाती है बल्कि उन्हें याद रखना भी आसान होता है, और फिर आप इन्हें आधार बना करके अब इस पर पूछे गए किसी भी प्रश्न का बड़े आराम से उत्तर भी दे लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से एक दोस्त हैं शिवम पांडे, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।